हम अक्सर कोई नया हिप हॉप या पॉप गाना सुनते हैं और अचानक बैकग्राउंड में बज रही बीट बहुत जानी पहचानी सी लगती है।
हाँ बिल्कुल, मतलब दिमाग में तुरंत घंटी बजती है, अरे ये तो 70 या 80 के दशक के किसी क्लासिक सोल ट्रैक का हिस्सा है।
राइट, और आज के प्रोड्यूसर्स जब किसी पुराने गाने को ऐसे सैंपल करते हैं तो वे केवल उसकी धुन नहीं चुरा रहे होते, वो असल में उस पुराने गाने के पूरे जज्बात, उसके इतिहास को उठाकर एक बिल्कुल नए संदर्भ में रख रहे होते हैं।
सही कहा, ताकि जो सुनने वाले हैं वो उस पुराने जादू को एक नए अंदाज में महसूस कर सकें।
और फिल्मों में भी तो ठीक ऐसा ही होता है, जब कोई डायरेक्टर किसी पुराने क्लासिक सीन का कोई ईस्टर एग या कोई छोटा सा सुराग छिपा देता है।
बिल्कुल, और जो दर्शक उसे पकड़ लेते हैं उनके लिए तो फिल्म का मजा एकदम दुगना हो जाता है।
हाँ, तो कला की दुनिया में ये बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, और आज इस गहन चर्चा में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसमें यही तकनीक किसी आधुनिक स्टूडियो या फिल्म सेट पर नहीं इस्तेमाल हो रही,
बल्कि हजारों साल पुराने प्राचीन ग्रंथों में इस्तेमाल हो रही है, और यही बात इस पूरे विषय को इतना ज्यादा रोमांचक बना देती है।
बिल्कुल, आज इस विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो डॉक्टर मैथ्यू एस हामन का एक बहुत ही दिलचस्प शोध है। इसका नाम है द बाइबल्स यूज ऑफ द बाइबल।
बहुत ही शानदार पेपर है ये।
हाँ, और हम विशेष रूप से उनके एक केस स्टडी पर गौर करेंगे। ये अध्ययन इस बात की जांच करता है कि कैसे पहली सदी के लेखक, खास तौर पर पॉल, जिन्होंने गलातियों या गैलेशियंस नाम का पत्र लिखा था, वो अपने से भी कई सदियों पुरानी किताब यशाया या आयजाया के शब्दों को सैंपल कर रहे थे।
यानी वो पुराने छिपे हुए अर्थों को अपने नए लेखन में पिरो रहे थे।
चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये केवल एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक तरह का ऐतिहासिक डिटेक्टिव वर्क है।
बिल्कुल, एक जासूसी काम की तरह है ये।
तो अगर हम एक जासूस की तरह शुरुआत करें तो किसी भी प्राचीन पाठ में इन सुरागों को खोजने की पहली सीढ़ी क्या होती है? मतलब ये कैसे साबित होता है कि कोई लेखक वाकई में किसी पुरानी किताब का हवाला दे रहा है और ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है?
एक जासूस की तरह सोचने का ये जो नजरिया है ना, ये बहुत सटीक है। यहाँ पे यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि डॉक्टर हामन इसे अकेडमिक भाषा में अल्यूजन या संकेत खोजना कहते हैं।
अल्यूजन।
हाँ, और इसे साबित करने के लिए हमें सबसे पहले डोनर टेक्स्ट को देखना होता है।
डोनर टेक्स्ट यानी जहाँ से वो विचार लिया गया है।
बिल्कुल, जो कि इस मामले में यशाया की किताब है। और फिर हम देखते हैं रिसेप्टर टेक्स्ट को, यानी जिसमें वो विचार पिरोया गया है,
जैसे कि पॉल का गलातियों वाला पत्र।
एकदम सही, तो हमें इन दोनों के बीच की भाषाई समानताओं को खोजना होता है। पर यहाँ हमें एक पल रुककर थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ भी समझना होगा।
हाँ, क्योंकि भाषा का भी तो एक बड़ा पेच है इसमें।
जी, यशाया की जो मूल किताब थी वो हिब्रू भाषा में लिखी गई थी, लेकिन पॉल तो पहली सदी में लिख रहे थे, और उस समय तक अलेक्जेंडर द ग्रेट के विजय अभियानों के कारण पूरे उस इलाके की जो आम भाषा थी वो ग्रीक बन चुकी थी।
एक तरह की लिंगुआ फ्रैंका बन गई थी ग्रीक।
बिल्कुल, इसलिए यहूदी विद्वानों ने हिब्रू धर्म ग्रंथों का ग्रीक में अनुवाद किया था, जिसे हम सेप्टुआजेंट कहते हैं, और पॉल अपने लेखन में इसी ग्रीक अनुवाद का इस्तेमाल कर रहे थे।
ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, यानी पॉल और उनके आसपास के लोग हिब्रू के बजाय ग्रीक वर्जन पढ़ रहे थे, जो कि उस समय की आम भाषा थी।
एकदम, और जब हम पॉल के गलातियों 1:15-17 और ग्रीक सेप्टुआजेंट के यशाया 49 को एक साथ रखकर पढ़ते हैं तो सुराग बिल्कुल साफ नजर आने लगते हैं।
मतलब शब्द आपस में मिलने लगते हैं।
हाँ, उदाहरण के लिए पॉल लिखते हैं कि ईश्वर ने उन्हें माँ के गर्भ से ही अलग किया या चुना था।
और जब हम यशाया 49 पढ़ते हैं तो वहाँ जो ईश्वर का विशेष दास है उसके लिए ठीक यही वाक्यांश इस्तेमाल हुआ है,
माँ के गर्भ से।
जी हाँ, बिल्कुल वही शब्द, माँ के गर्भ से। लेकिन यहाँ एक छोटा सा संदेह पैदा होता है। मतलब जन्म या जीवन की शुरुआत की बात करते हुए माँ के गर्भ से कहना तो एक बहुत ही आम मुहावरा लगता है मुझे।
हाँ।
अगर मैं आज किसी से कहूँ कि मैं दिन रात एक कर रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी विशिष्ट पुरानी कविता का हवाला दे रही हूँ। क्या एक अकेला आम वाक्यांश ये साबित करने के लिए काफी है कि पॉल जानबूझकर यशाया की नकल कर रहे थे?
आपका संदेह बिल्कुल जायज है, और डॉक्टर हामन भी यही मानते हैं कि अगर ये सिर्फ एक ही सुराग होता ना तो इसे निश्चित रूप से एक संयोग मानकर खारिज किया जा सकता था।
राइट।
लेकिन बात यह है कि ये एक अकेली घटना नहीं है, ये उन कई सुरागों में से सिर्फ पहला सुराग है जो एक साथ मिलकर एक पूरा पैटर्न बनाते हैं।
अच्छा, तो और भी सुराग है वहाँ?
बहुत सारे। असली सुराग तो व्याकरण की गहराइयों और अनुवाद की बारीकियों में छिपे हैं। जैसे अगर हम इन मी बनाम टू मी के मामले को देखें,
इन में और टू मी, तो क्या अनुवादकों ने वहां कोई खास शब्द इस्तेमाल किया है जो पूरा अर्थ ही बदल देता है?
बहुत बड़ा बदलाव है ये। जब आप आज की ज्यादातर आधुनिक अंग्रेजी बाइबल में गलातियों 1:16 पढ़ते हैं, तो वहां अनुवादकों ने लिखा है कि ईश्वर ने अपने पुत्र को पॉल को प्रकट किया,
यानी टू मी।
हाँ, टू मी।
और एक आम पाठक के लिए बहुत स्वाभाविक लगता है। हम सोचते हैं कि पॉल को कोई बाहरी दर्शन हुआ होगा, कोई विजन दिखा होगा सामने।
हाँ, जैसे आसमान में कुछ दिखा हो या कोई रोशनी आई हो।
बिल्कुल।
लेकिन डॉक्टर हार्मन यहाँ बताते हैं कि मूल ग्रीक पांडुलिपि में पॉल ने जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है, उसका सटीक अर्थ है ईश्वर ने अपने पुत्र को पॉल में प्रकट किया।
पॉल में प्रकट किया, यानी इन मी।
जी हाँ, इन मी। पर बताने का तरीका नहीं था ये, सीधे तौर पर यशाया 49 की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है।
वो कैसे?
क्योंकि यशाया 49 के श्लोक 3 में ईश्वर उस भविष्यवाणी वाले सेवक से कहता है, मैं तुम में महिमा पाऊंगा, इन यू।
वाओ।
हाँ, तो पॉल उसी विशिष्ट ग्रीक प्रपोजिशन को उठाकर अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने पाठकों को बता रहे हैं कि उनके भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो सीधे उस प्राचीन भविष्यवाणी से जुड़ा है।
ये तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है।
और इसके बाद एक और बहुत ही पुख्ता सुराग मिलता है, जो कि दास या सेवक के लिए इस्तेमाल हुए ग्रीक शब्दों के चुनाव से जुड़ा है।
शब्दों के चुनाव से आपका क्या मतलब है? क्या ग्रीक में दास के लिए कई अलग अलग शब्द होते हैं?
जी हाँ, ग्रीक भाषा बहुत समृद्ध है। यशाया की किताब के सेप्टुआजिंट अनुवाद में जब भी ईश्वर के दास या सेवक की बात होती है, तो अनुवादकों ने पूरी किताब में लगभग हमेशा पाइस शब्द का इस्तेमाल किया है।
पाइस?
हाँ, पाइस। इस शब्द का मतलब सेवक भी हो सकता है और बच्चा भी। ये थोड़ा व्यापक शब्द है और ये पूरी किताब का एक सेट पैटर्न है।
ओके।
लेकिन जब अनुवादक अध्याय 49 पर पहुंचते हैं, तो वे अचानक इस नियम को तोड़ देते हैं। वे पाइश की जगह एक अलग और बहुत कड़े शब्द डूलस का उपयोग करते हैं।
डूलस, इसका क्या मतलब होता है?
डूलस का अर्थ होता है एक बंधुआ भास, जिसका अपना कोई जीवन नहीं होता, जो पूरी तरह से सिर्फ अपने स्वामी को समर्पित होता है।
ये तो बहुत अजीब बात है। अगर आप पूरी किताब में एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ एक अध्याय में उसे क्यों बदलेंगे? ये तो ऐसा है जैसे किसी लेखक ने पूरी किताब में किताब शब्द इस्तेमाल किया हो और अचानक एक पन्ने पर उसे ग्रंथ लिख दिया हो। ये तो बहुत ध्यान खींचता है।
बिल्कुल, और इसने पॉल का ध्यान भी खींचा। डॉक्टर हार्मन दिखाते हैं कि जब पॉल गलातियों 1:10 में अपना परिचय देते हैं, तो वो खुद को आम शब्द पाइस नहीं कहते,
वो खुद को डूलस कहते हैं।
हाँ, एकदम सही। वो जानबूझकर खुद को मसीह का डूलस कहते हैं। वो उसी असामान्य शब्द का चुनाव कर रहे हैं जो यशाया 49 में इस्तेमाल हुआ है।
क्या बात है।
यही नहीं, पॉल आगे ये भी लिखते हैं कि उन्होंने व्यर्थ में मेहनत नहीं की। और ये यशाया 49 के श्लोक 4 का एक सीधा और हूबहू उद्धरण है, जहां वो सेवक कहता है कि मैंने व्यर्थ में मेहनत की है।
तो अगर हम इन सबको एक साथ रख कर देखें, माँ के गर्भ से, फिर आंतरिक प्रकटीकरण यानी इन मी अचानक से बदला हुआ शब्द डूलेस, और व्यर्थ में मेहनत वाला मुहावरा, तो ये संयोग होने की संख्या की संभावनाओं से बहुत परे निकल जाता है।
बिल्कुल,
ये कोई तुक्का नहीं हो सकता।
हाँ, ये पूरी तरह से जानबूझकर बनाया गया पैटर्न है। ऐसा लग रहा है जैसे पॉल अपने पाठकों को उंगली पकड़कर यशाया 49 की तरफ ले जा रहे हो। उनके दिमाग में क्या चल रहा था?
राइट, वो भी तो समझना जरूरी है।
इसे समझने के लिए हमें उस डोनर टेक्स्ट यानी यशाया के असली संदर्भ में जाना होगा, जिसे डॉक्टर हार्मन हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं।
हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्स्ट मतलब हमें सिर्फ उस एक वाक्य या एक श्लोक को नहीं देखना है, बल्कि पूरे परिदृश्य या क्षितिज पर नजर डालनी है कि उस किताब में उस समय आसपास क्या हो रहा था।
बिल्कुल, इसे आप गूगल मैप्स पर जूम आउट करने जैसा समझ सकते हैं। आप किसी एक घर को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ये ना देख लें कि वो किस मोहल्ले या किस शहर का हिस्सा है।
सही बात है।
अब पीछे जाकर यशाया 42 को देखना होगा।
राइट।
अध्याय 42 में ईश्वर एक दास या सेवक को बुलाता है, लेकिन यहाँ वो सेवक कोई एक व्यक्ति नहीं है।
तो वो कौन है?
यहाँ वो सेवक पूरा इसराइल राष्ट्र है।
ओके, तो
इस पूरे राष्ट्र का मिशन क्या था, उन्हें क्या करना था? इसराइल का मिशन दुनिया के अन्य सभी राष्ट्रों के लिए एक मॉडल बनना था। उन्हें न्याय, करुणा और ईश्वर के प्रति निष्ठा का एक जीवंत उदाहरण बनना था, ताकि बाकी दुनिया उन्हें देखकर सही रास्ता चुन सके।
एक तरह से उन्हें दुनिया के लिए एक प्रकाश बनना था।
जी हाँ, बिल्कुल वही शब्द, अन्य जातियों के लिए प्रकाश।
लेकिन अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें और खुद उन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें, तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि इसराइल अपने इस मिशन में पूरी तरह से विफल रहा। मेरा मतलब है वे खुद उन दमनकारी साम्राज्यों की तरह बन गए थे जिनसे उन्हें अलग होना था।
दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ। यशाया 42 के अंत तक पहुंचते पहुंचते हालात इतने खराब हो जाते हैं कि जिस सेवक को दुनिया को रास्ता दिखाना था उसे ही ग्रंथ में अंधा और बहरा घोषित कर दिया जाता है।
ओह, तो राष्ट्र अपने इस महान मिशन में फेल हो गया है।
जी, और ये जो भारी विफलता है ना, यही वो मंच तैयार करती है जिस पर यशाया 49 की एंट्री होती है।
तो क्या यशाया 49 इस विफलता का कोई समाधान पेश करता है, कोई प्लान बी लेकर आता है?
हाँ, और ये एक बहुत बड़ा और मौलिक बदलाव है। यशाया 49 में एक बार फिर से एक सेवक का जिक्र आता है, लेकिन इस बार ये सेवक कोई पूरा राष्ट्र या समूह नहीं है।
तो ये कौन है?
ये एक व्यक्तिगत सेवक है, इंडिविजुअल। ये अकेला व्यक्ति वो सब कुछ करेगा जो पूरा राष्ट्र करने में विफल रहा। ग्रंथ कहता है कि ये नया सेवक दुखों का सामना करेगा, अपने ही लोगों द्वारा अस्वीकार किया जाएगा, लेकिन अंततः वो न केवल भटके हुए इसराइल को वापस लाएगा बल्कि सारी दुनिया की जातियों के लिए एक प्रकाश बनेगा।
एक सेकेंड रुकिए, यहाँ तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा हो रहा है मेरे दिमाग में।
कैसा विरोधाभास?
अगर हम इस पूरे शोध को पहली सदी के यहूदी और शुरुआती ईसाई धर्मशास्त्र के नजरिए से देखें, तो वो व्यक्तिगत सेवक जो इसराइल की विफलता को सुधारने आ रहा है, जो दुख सहेगा और दुनिया को प्रकाश देगा, वो तो जीसस है ना?
जीसस,
बिल्कुल। लगभग पूरी पारंपरिक समाज और खुद नया नियम यही कहता है कि यशाया का ये दुख सहने वाले सेवक यीशु है।
आप बिल्कुल सही नस पर उंगली रख रही हैं। ये इस पूरे शोध का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक तनाव है।
तो अगर वो बहुप्रतीक्षित सेवक यीशु है, तो फिर पॉल, जो खुद को यीशु का अनुयायी कहते हैं, वो उस विशेष भविष्यवाणी का उपयोग अपने स्वयं के जीवन और अपनी निजी मिशन का वर्णन करने के लिए कैसे कर सकते हैं?
यही तो सवाल है।
मेरा मतलब है, पहली सदी के यहूदी समाज में किसी आम इंसान का एक पवित्र भविष्यवाणी को खुद पर लागू कर लेना, क्या ये ईश्वर निंदा या चरम स्तर का अहंकार नहीं है? ये तो ऐसा है जैसे कोई आम नागरिक अचानक किसी देश के राजा का मुकुट खुद पहन ले और कहे कि ये मेरे लिए बना है। पॉल ऐसा जोखिम क्यों उठा रहे थे?
पहली सदी के श्रोताओं के लिए दावा वास्तव में चौंकाने वाला और विवादित रहा होगा। पॉल का ये कहना कि मैं वो सेवक हूँ जो जातियों के लिए प्रकाश बनेगा, ये सतह पर देखने में बहुत बड़ा अहंकारी ही लगता है।
हाँ, बिल्कुल लगता है।
लेकिन यहीं पर डॉक्टर हार्मन का विश्लेषण हमें सतह के थोड़ा नीचे ले जाता है। इस पहचान के संकट या इस भारी विरोधाभास का समाधान हमें उसी किताब में थोड़ा आगे जाकर मिलता है जहाँ पॉल ये सब लिख रहे थे, यानी गलातियों की किताब में।
जब मैंने स्रोत सामग्री में यह हिस्सा पढ़ा था तो ये मेरे लिए इस पूरे अध्ययन का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन था। हम गलातियों 2:20 की बात कर रहे हैं ना?
बिल्कुल, गलातियों 2:20 वो मास्टर की है जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा देती है। इस श्लोक में पॉल एक बहुत ही गहरी बात लिखते हैं। वो कहते हैं, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ बल्कि मसीह मुझ में जीवित है।
इन मी।
हाँ, इन मी। इस एक वाक्य में इतनी गहरी परतें हैं कि ये पॉल पर लगने वाले अहंकार के हर एक आरोप को तुरंत खत्म कर देता है।
चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। पॉल कह रहे हैं, अब मैं जीवित नहीं हूँ बल्कि मसीह मुझ में जीवित है।
याद कीजिए, हमने पहले बात की थी कि कैसे पॉल ने यशाया 49 से इन मी या मुझ में वाला ग्रीक विचार लिया था। अब वो साफ साफ बता रहे हैं कि उनके अंदर आखिर कौन प्रकट हुआ है। डॉक्टर हार्मन यहाँ समझाते हैं कि पॉल बहुत ही चतुराई से यशाया की किताब के दो अलग अलग हिस्सों, अध्याय 49 और अध्याय 53 को एक साथ मिला रहे हैं। यशाया 53 उस दुख सहने वाले सेवक के बारे में है जो अपने लोगों के पापों के लिए खुद का बलिदान कर देता है,
जो कि मसीह है जिन्होंने सूली पर अपनी जान दी।
एकदम सही। पॉल पूरी तरह से और बिना किसी संदेह के ये मानते हैं कि यशाया का वो अंतिम दुख सहने वाला दास यीशु ही है।
राइट।
लेकिन क्योंकि वही यीशु अब आत्मिक रूप से पॉल के अंदर जीवित है, इसलिए पॉल अब अपने व्यक्तिगत दम पर या अपने अहंकार से काम नहीं कर रहे हैं। पॉल का पुराना स्वरूप तो खत्म हो चुका है।
अब वो सिर्फ एक बर्तन या एक माध्यम बन गए हैं जिसके जरिए यीशु यशाया 49 वाले दास के मिशन को, यानी अन्य जातियों तक प्रकाश ले जाने के काम को पूरा कर रहे हैं।
बिल्कुल सटीक।
ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अवधारणा है। अगर मैं इसे आज के तकनीकी संदर्भ में समझाने की कोशिश करूँ तो ये किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिश्ते की तरह है।
वो कैसे?
मान लीजिए कि पॉल का जो पुराना स्वरूप था, उनका पुराना व्यक्तित्व, वो एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब वो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट कर दिया गया है। जैसे मैंने कहा, मैं सूली पर चढ़ाया गया हूँ और उसकी जगह अब उस हार्डवेयर के अंदर एक नया और बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है जिसे हम क्राइस्ट ओएस कह सकते हैं।
अरे वाह, ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है,
है ना? अब अगर वो डिवाइस कोई बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा मिशन पूरा कर रहा है, तो आप उस धातु और प्लास्टिक के हार्डवेयर यानी पॉल की तारीफ नहीं करेंगे या उसे अहंकारी नहीं कहेंगे।
बिल्कुल नहीं।
आप जानते हैं कि जो भी आउटपुट आ रहा है वो दरअसल उस नए सॉफ्टवेयर का काम है जो उसके अंदर चल रहा है।
क्या बात है। और अगर हम इस क्राइस्ट ओएस वाली बेहतरीन उपमा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो आप देखिए, जब कोई नया शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो वो डिवाइस को सिर्फ अकेला नहीं छोड़ता, वो उसे एक बड़े नेटवर्क या एक क्लाउड से जोड़ देता है।
एक नेटवर्क बन जाता है।
हाँ, और यही बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े निष्कर्ष की तरफ ले जाती है। डॉक्टर हार्मन इसे अप्रत्यक्ष पूर्ति या इनडायरेक्ट फुलफिलमेंट का नाम देते हैं।
तो इस नेटवर्क या क्लाउड का उस प्राचीन ग्रंथ में क्या मतलब है? इस पूरी ऐतिहासिक और भाषाई चर्चा का अंतिम परिणाम क्या निकलता है श्रोताओं के लिए?
इस बड़े चित्र का सबसे खूबसूरत हिस्सा यशाया की किताब के अध्याय 54 में सामने आता है। अभी तक अध्याय 40 से लेकर 53 तक जब भी सेवक शब्द आता है वो हमेशा व्याकरण की दृष्टि से एक वचन होता है,
यानी सिंगुलर, एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला मसीहा।
बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम अध्याय 54 में प्रवेश करते हैं एक बहुत बड़ा व्याकरणिक भूकंप आता है।
अचानक से वो जो सेवक है वो सेवको बन जाता है, एक वचन बहुवचन में बदल जाता है, प्लूरल हो जाता है।
हाँ, और ये कोई साधारण व्याकरण का नियम नहीं है, ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। इसका अर्थ ये है कि उस एक व्यक्तिगत सेवक के काम और बलिदान ने कहानी को वहीं पर खत्म नहीं किया, बल्कि उसने एक पूरे नए समुदाय का निर्माण किया है।
अच्छा।
उस एक व्यक्ति के काम ने ऐसे अनगिनत लोगों या सेवकों को जन्म दिया जो अब उस मूल मिशन को आगे बढ़ाएंगे।
इसका मतलब है कि ये जो क्राइस्ट ओएस पॉल के अंदर इंस्टॉल हुआ था वो सिर्फ पॉल तक सीमित नहीं रहने वाला था। पॉल तो बस उस बड़े नेटवर्क का एक शुरुआती नोड थे।
यही बात है। ये सिद्धांत दुनिया को ये बता रहा था कि ईश्वर का मिशन, पूरी दुनिया के लिए न्याय और शांति का प्रकाश बनने का मिशन, अब सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति तक या किसी एक विशिष्ट राष्ट्र तक सीमित नहीं है।
वो फैल रहा था।
जी, ये उस पूरे समुदाय तक फैल गया है जिसे आज हम चर्च या विश्वासियों का समूह कहते हैं, क्योंकि जिस तरह वो सॉफ्टवेयर पॉल के अंदर काम कर रहा था ना, वही सॉफ्टवेयर उस पूरे समुदाय के अंदर भी काम कर रहा है जिससे उन्हें उस प्राचीन सेवक की पहचान विरासत में मिल रही है।
ये देखना कितना अद्भुत है कि व्यक्तिगत पहचान और सामूहिक जिम्मेदारी कैसे आपस में जुड़ जाती हैं। एक व्यक्ति का काम एक पूरे समूह का वैश्विक मिशन बन जाता है।
बिल्कुल।
और ये सब सिर्फ इसीलिए समझ में आता है क्योंकि पॉल ने यशाया को एक मृत अतीत के रूप में नहीं पढ़ा, बल्कि अपने वर्तमान को समझाने वाले एक जीवित नक्शे के रूप में इस्तेमाल किया।
सही कहा।
अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सोचना वाकई रोंगटे खड़े कर देता है कि शब्दों की ताकत क्या होती है। अनुवाद का एक छोटा सा विकल्प जैसे टू मी की जगह इन मी का इस्तेमाल करना या किसी आम शब्द की जगह डूलिस जैसे कठोर शब्द का चयन करना एक पूरे धर्मशास्त्र को, एक व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य को और यहाँ तक कि इतिहास की दिशा को समझने का नजरिया कैसे बदल सकता है।
प्राचीन लेखक शब्दों को सिर्फ पन्नों को भरने के लिए नहीं रखते थे। अब देखिए, वे एक मूर्तिकार की तरह हर एक शब्द, हर एक प्रीपोजिशन को बहुत ही सावधानी से गढ़ते थे ताकि वे गहरे अर्थों की कई परतें बना सकें। वे जानते थे कि भविष्य में कोई ना कोई पाठक इन सुरागों को जरूर खोजेगा।
और यही बात आज हमें अपने खुद के जीवन पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। जरा सोचिए श्रोताओं, अगर हजारों साल पहले के इन लेखकों ने एक एक शब्द और मुहावरे का चुनाव इतनी सटीकता, इतनी बुद्धिमती और इतने गहरे अर्थों के साथ किया था ताकि आने वाली पीढ़ियां उन अर्थों को खोल सकें, तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सूचनाओं के एक ऐसे महासागर में जी रहे हैं जहां इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ने हमें बस तेजी से स्वाइप और स्क्रोल करना सिखा दिया है। हम हर दिन हजारों शब्द पढ़ते हैं, न्यूज आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट, दोस्तों के संदेश, लेकिन क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि उन शब्दों के पीछे असल अर्थ क्या है?
बहुत कम।
क्या इस निरंतर जल्दबाजी में हमने शब्दों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थों को खोजने का वो धैर्य खो दिया है? शायद हमें भी, चाहे वो किसी प्राचीन ग्रंथ का पन्ना हो, कोई समकालीन लेख हो या किसी अपने का भेजा हुआ साधारण सा संदेश, शब्दों को थोड़ी और गहराई से थोड़ा और ठहर कर पढ़ना चाहिए। क्योंकि कौन जाने सतह के ठीक नीचे कौन सी नई सच्चाई या कौन सा नया ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी खोज का इंतजार कर रहा हो।